अध्याय 15 इसहाक का विवाह। यह अध्याय उत्पत्ति 24 पर आधारित है। अब्राहम वृद्ध हो चला था और जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, लेकिन अपने वंश को दिए हुए वचन को परिपूर्ण करने के लिए एक काम बचा हुआ था। इसहाक चुने हुए लोगों का पिता और परमेश्वर की व्यवस्था के संरक्षक के रूप में ईश्वर द्वारा नियुक्त था, लेकिन वो अभी तक अविवाहित था। कनानवासी मूर्ति पूजक थे और परमेश्वर ने उनके और उसके लोगों के बीच अंतर्विवाह वर्जित किया था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे विवाहों से स्वधर्म त्याग को बढ़ावा मिलता। कुल पिता को अपने पुत्र के चारों ओर दुराचारी तत्वों के प्रभाव का डर था। इसहाक का चरित्र अब्राहम का परमेश्वर में स्वाभाविक विश्वास और उसके प्रति आज्ञानुकूलता का प्रतिबिंब था, पर नौजवान का प्रेम भ्रातृभाव घनिष्ठ था और वो व्यवहार में नम्र और दयालु था। परमेश्वर का भय न मानने वाले की संगति में सामंजस्य बचाए रखने के लिए उस पर सिद्धांतों का त्याग करने का खतरा बना रहता। अब्राहम के मन में अपने पुत्र के लिए पत्नी का चयन एक महत्वपूर्ण विषय था। वो उसका विवाह ऐसी स्त्री से करवाना चाहता था जो उसे परमेश्वर से दूर नहीं ले जाए। प्राचीन काल में विवाह का प्रबंध माता पिता करते थे और ये रीति परमेश्वर के उपासकों में प्रचलित थी। कोई भी उससे विवाह करने को बाध्य न था जिससे वो प्रेम नहीं रखता हो, लेकिन अपने प्रेम को प्रदान करने में नवयुवक परमेश्वर का भय मानने वाले व अनुभवी अभिभावकों के निर्णय से मार्गदर्शित होते थे। इसके विपरीत कोई भी तरीका अपनाना अभिभावकों का अपमान व अपराध माना जाता था। अपने पिता के विवेक और प्रेम में विश्वास रखते हुए इसहाक इस विषय को अपने पिता को सौंप देने में संतुष्ट था, और उसे ये भी विश्वास था कि इस चयन में परमेश्वर स्वयं निर्देश देगा। कुल पिता का ध्यान मेसोपोटामिया देश में अपने पिता के परिजनों की ओर गया। वे मूर्ति पूजा से स्वतंत्र तो नहीं थे, लेकिन वे सच्चे परमेश्वर का ज्ञान और उसकी उपासना संजोए थे। इसहाक को कनान छोड़कर उनके पास नहीं जाना था, पर वहां से एक स्त्री अपना घर छोड़कर जीवित परमेश्वर की पवित्र आराधना को कायम रखने में उसके साथ जुड़ सकती थी। अब्राहम ने यह महत्वपूर्ण काम अपने सबसे वरिष्ठ सेवक को सौंपा, जो एक धर्मी, अनुभवी, सही अनुमान लगाने वाला व्यक्ति था, वह जिसने कई साल निष्ठापूर्वक उसकी सेवा की थी। उसने अपने इस दास से परमेश्वर के सम्मुख शपथ लेने को कहा कि वो कनानियों में से नहीं, वरन मेसोपोटामिया में नाहोर के परिवार से एक कुवारी स्त्री को चुनकर लाएगा। उसने दास को इसहाक को साथ ले जाने से मना किया। यदि इसहाक के लिए अपना घर छोड़कर आने वाली कोई नवयुवती नहीं मिलती तो संदेशवाहक अपनी शपथ से आजाद था। कुलपिता ने ये आश्वासन देते हुए कि परमेश्वर इस अभियान को सफलता का मुकुट पहनाएगा, अपने दास को इस मुश्किल और संवेदनशील कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, उसने कहा, जो मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया, वहीं अपना दूत तेरे आगे भेजेगा। संदेशवाहक बिना विलंब किए निकल पड़ा। अपने साथ लौटकर आने वाले वैवाहिक समूह और स्वयं की टोली के उपयोग के लिए 10 ऊँटों को लिए, इसहाक की भावी पत्नी और उसकी सहेलियों के लिए भी उपहार लिए। उसने दमिश्क के भी आगे पूर्व की महान नदी के सीमावर्ती उपजाऊ तराई तक यात्रा की। नाहौर के शहर हारान में वो नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठे गया, जहां संध्या के समय स्त्रियां जल भरने के लिए आती थीं। उसके लिए ये उत्सुकतापूर्ण विचार मग्न होने का समय था। उसके चयन पर उसके स्वामी के घराने के लिए ही नहीं, वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण परिणाम निर्भर थे। अब्राहम के कहे शब्दों को स्मरण कर कि परमेश्वर अपना दूत उसके साथ भेजेगा, उसने सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए आग्रह के साथ प्रार्थना की। अपने स्वामी के परिवार में अतिथि सत्कार और उदारता के लगातार अभ्यास का अभ्यस्त था, अतः उसने विनती की कि शिष्टाचार के प्रदर्शन परमेश्वर द्वारा भेजी गई स्त्री का संकेत हो। प्रार्थना के किए जाते ही उत्तर आ गया। कुएं पर आईं सभी स्त्रियों में से एक के शिष्टतापूर्ण व्यवहार से वह आकर्षित हुआ। जैसे ही वह कुएं से आई, परदेशी उससे मिलने गया और उसके कांधे पर रखे घड़े में से कुछ जल देने को कहा। उसके निवेदन को नम्र उत्तर मिला कि वह ऊँटों के लिए भी पानी खींचेगी। रीति के अनुसार राजाओं की पुत्रियां भी अपने पिता के पशु समूह के लिए कुएं से पानी खींचती थीं। इस तरह मांगा हुआ संकेत दे दिया गया। स्त्री अति सुंदर और कवारी थी और उसकी तत्पर शिष्टता उसके नम्र हृदय और सक्रिय उद्यमी स्वभाव का प्रमाण थी। यहां तक परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। उसकी उदारता का उपहारों द्वारा आभार मानकर उसने उसके माता पिता के बारे में पूछा और यह जानकर कि वह अब्राहम के भतीजे बतुएल की पुत्री थी, उसने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। दास ने कन्या के पिता के घर में सत्कार चाहा था और धन्यवाद करते समय अब्राहम के साथ अपने संबंध के तथ्य को उजागर किया था। घर लौटने पर कन्या ने सारा वृतांत कह सुनाया और लाबान, जो उसका भाई था, परदेशी और उसके साथियों का सत्कार करने के लिए दौड़ा। एलियाजर अपने प्रयोजन के बारे में, कुएं पर उसकी प्रार्थना के संबंध में और उसके संदर्भ में सभी परिस्थितियों के बारे में बताने से पूर्व जलपान करने को तैयार न था। फिर उसने कहा, यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब उसे उत्तर मिला, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। परिवार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात रिबका से पूछा गया, यदि वह अपने पिता के घर से इतनी दूर जाना चाहेगी जिससे कि वह अब्राहम के पुत्र से विवाह कर सके। जो कुछ हुआ था उससे उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे इसहाक की पत्नी के रूप में चुना था, और उसने कहा, हां, मैं जाऊंगी। अपने अभियान की सफलता पर अपने स्वामी की प्रसन्नता की कल्पना कर दास लौट जाने को व्याकुल था, और सुबह होते ही वह घर की ओर चल दिया। अब्राहम बीरशेबा में रहता था और इसहाक पास के देश में भेड़ों को चराकर हारान से संदेशवाहक के आगमन की प्रतीक्षा करने अपने पिता के तंबू में लौटा। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंख उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांक लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारे के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। अब्राहम ने परमेश्वर का भय रखने वालों और परमेश्वर का भय नहीं रखने वालों के बीच अंतर्विवाह के परिणाम को कैन के समय से अपने समय तक देखा था। हाजिरा से उसका विवाह और इश्माएल और लूत के वैवाहिक संबंधों के परिणाम उसके सामने थे। अब्राहम और सारे के विश्वास में कमी के परिणाम स्वरूप इश्माएल का जन्म हुआ, जिससे अधर्मियों और धर्मी वंश में मेलजोल बढ़ा। इश्माएल की मूर्ति पूजक पत्नियों के साथ संबंध और मां के मूर्ति पूजक परिजनों के प्रभाव ने पुत्र पर पिता के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। हाजिरा की ईर्ष्या और उसके द्वारा चुनी गई इश्माएल के पत्नियों ने उसके परिवार के लिए ऐसा प्रतिबंध खड़ा किया जिस पर अब्राहम ने व्यर्थ में विजय पानी चाही। इश्माएल पर अब्राहम की शिक्षा का प्रभाव तो पड़ा था, लेकिन उसकी पत्नियों के प्रभाव ने उसके परिवार में मूर्ति पूजक को बढ़ावा दिया। अपने पिता से अलग हुए वह परमेश्वर के भय और प्रेम के अभाव में घर के कलह और प्रतिद्वंदिता के कारण लूटमार का असभ्य जीवन जीने को विवश हो गया और उसका हाथ सबके विरुद्ध और सबके हाथ उसके विरुद्ध हो गए। उत्पत्ति 16:12। आने वाले दिनों में उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और अपने पिता के परमेश्वर के पास लौट आया, लेकिन उसके वंश को दी गई उसके चरित्र की छाप बनी रही। उससे उत्पन्न शक्तिशाली वंश उत्तेजक मूर्ति पूजक थे, जो इसहाक के वंशजों के लिए हमेशा पीड़ाजनक और कष्टदायक थे। लूत की पत्नी एक स्वार्थी व अधर्मी महिला थी और उससे प्रभावित होकर लूत अब्राहम से अलग हो गया। यदि लूत की पत्नी का प्रश्न नहीं होता तो लूत विवेकपूर्ण परमेश्वर का भय रखने वाले कुलपिता के मार्गदर्शन से वंचित कभी भी सदोम में न रहता। बीते दिनों में अब्राहम से प्राप्त शिक्षा के अभाव में अपनी पत्नी के प्रभाव और उस दुष्ट नगर के संपर्क के कारण उसने ईश्वरीय सिद्धांतों का त्याग कर दिया होता। लूत का विवाह और वास करने के लिए सदोम का चयन कई पीढ़ियों के लिए बुराई के कारण घटित घटनाओं की श्रृंखला में संसार के लिए पहले लिंक थे। परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी बिना खतरे के स्वयं को परमेश्वर का भय न मानने वाला के साथ नहीं जोड़ सकता। आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? वैवाहिक संबंध में शांति और समृद्धि संबंधित पक्षों की एकता पर निर्भर करते हैं, लेकिन विश्वासी और अविश्वासी के बीच रुचि, झुकाव व उद्देश्य का मौलिक अंतर होता है। वे दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं जिनमें कोई सहमति नहीं हो सकती। किसी के सिद्धांत कितने ही पवित्र और उचित हों, लेकिन एक अविश्वासी साथी के प्रभाव की प्रवृत्ति उसे परमेश्वर से दूर करने की होगी। जो बिना परिवर्तन के वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, वो परिवर्तन के माध्यम से अपने साथी के प्रति ईमानदार होने के लिए और अधिक उत्तरदायी हो जाता है, भले ही धर्म के संदर्भ वे कितने ही अलग क्यों न हों। फिर भले ही परीक्षण और उत्पीड़न सहना पड़े, ईश्वर के अधिकारों को प्रत्येक सांसारिक संबंध से ऊपर रखना चाहिए। प्रेम और नम्रता की भावना से यह निष्ठा अविश्वासी को जीतने के लिए प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन बाइबल में मसीही लोगों का अधर्मी लोगों के साथ विवाह वर्जित है। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में परमेश्वर का निर्देश इस प्रकार है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। परमेश्वर ने इसहाक को संसार को धन्य करने वाली प्रतिज्ञाओं का उत्तराधिकारी बनाकर बहुत सम्मानित किया, लेकिन फिर भी जब वह 40 वर्ष का था, पत्नी के चयन के काम के लिए जब उसके पिता ने अपने अनुभवी ईश्वर का भय मानने वाले सेवक को नियुक्त किया, उसने अपने पिता के निर्णय का समर्थन किया और उस विवाह का परिणाम, जैसे कि शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है, घरेलू शांति का एक सुंदर व हृदय स्पर्शी चित्र है। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारे के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। कितना अंतर है इसहाक द्वारा अपनाए हुए रास्ते और हमारे समय के नौजवानों व तथा कथित मसीहों द्वारा अपनाए रास्तों में। युवाओं को प्रायः लगता है कि प्रेम के विषय में उन्हें स्वयं से ही परामर्श लेना चाहिए, वह इसका नियंत्रण न तो ईश्वर के और न ही माता पिता के हाथ में होना चाहिए। पुरुषत्व व नारीत्व की अवस्था में पहुंचने से पूर्व ही वे स्वयं को बिना माता पिता की सहायता चयन करने योग्य समझने लगते हैं। उनकी मूर्खता ज्ञात करने के लिए उनके वैवाहिक जीवन के कुछ ही वर्ष पर्याप्त होते हैं, लेकिन तब तक उसके भयावह परिणामों को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसी असंयम और विवेक के अभाव को, जिसके कारण जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, बुराई को बढ़ावा देने की अनुमति दे दी जाती है, जब तक कि वैवाहिक संबंध एक जहरीले जुए का रूप न ले ले। कई लोगों ने इस जीवन में शांति को और आने वाले जीवन की आशा को नष्ट कर दिया है। यदि कोई विषय है जिस पर ध्यान पूर्वक सोचना समझना चाहिए और जिसमें अनुभवी व चिर आयु व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए, वह विषय विवाह से संबंधित है। जीवन भर के लिए दो लोगों को बंधन में बंधने के लिए कदम उठाने से पहले प्रार्थना के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन मांगना चाहिए और बाइबल को सलाहकार के रूप में देखना चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों की आगामी खुशहाली के प्रति स्वयं के उत्तरदायित्व को नहीं भूलना चाहिए। इसहाक का अपने माता पिता के निर्णय के प्रति सम्मान उस प्रशिक्षण का परिणाम था जिसने उसे आज्ञाकारितापूर्ण जीवन से प्रीति रखना सिखाया था। हालांकि अब्राहम अपने बच्चों से पैतृक अधिकारों के प्रति सम्मान की अपेक्षा करता था, पर उसका दैनिक जीवन इस बात का साक्ष्य था कि अधिकार स्वार्थी या स्वेच्छाचारी नियंत्रण नहीं था, वरन उसका आधार प्रेम था और उनकी भलाई और खुशहाली उसके लक्ष्य थे।
अभिभावकों को यह आभास होना चाहिए कि युवाओं की पसंद का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, ताकि वे अपने लिए उपयुक्त साथी का चयन कर सकें। ईश्वर के सहायतापूर्ण अनुग्रह और स्वयं के शिक्षण और उदाहरण द्वारा उन्हें बच्चों के बचपन से ही चरित्र को इस तरह ढालना चाहिए कि वे महान व पवित्र रहेंगे और जो अच्छा और सच्चा है उसकी ओर आकर्षित होंगे। समान स्वभाव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं। अच्छाई और पवित्रता और सत्य के प्रति प्रेम को आत्मा में प्रारंभ से ही प्रत्यारोपित होने दें और युवा उन लोगों के समाज की अभिलाषा करेंगे जो इन विशेषताओं के धनी हैं। अभिभावकों को अपने स्वयं के चरित्र और घरेलू जीवन में स्वर्गीय पिता के प्रेम और परोपकार का उदाहरण देना चाहिए। घरों को सूर्य के प्रकाश से भरा रहने दें। यह आपके बच्चों के लिए जमीन जायदाद या रुपए पैसे से अधिक लाभदायक होगा। उनके हृदयों में घर का प्रेम जीवित रहने दें ताकि वे अपने बचपन के घर को स्वर्ग के बाद शांति और प्रसन्नता के गढ़ जैसे स्मरण करें। परिवार के सभी सदस्यों पर एक ही चरित्र की छाप नहीं होती और धैर्य और सहनशीलता के अभ्यास के लिए अवसर प्रायः होंगे, लेकिन प्रेम और आत्म अनुशासन के माध्यम से सब एक दूसरे के साथ अटूट बंधन में जुड़ सकते हैं। सच्चा प्रेम एक उच्च स्तरीय व पवित्र सिद्धांत है जो स्वभाव में उस प्रेम से बिल्कुल अलग है जो आवेग से जागृत होता है और कठिन परीक्षा के दौरान अचानक ही समाप्त हो जाता है। पैतृक घर में कर्तव्यपरायण होकर युवा स्वयं को अपने परिवारों के लिए तैयार करते हैं। यहां उन्हें आत्मत्याग का अभ्यास करने दें और नम्रता, शिष्टाचार और मसीही संवेदना प्रकट करने दें। इस तरह प्रेम को हृदय में सक्रिय रखा जाएगा और जो कोई भी ऐसे घराने से अपने स्वयं को परिवार के मुखिया के रूप में खड़ा करता है, वह उसकी, जिसे उसने अपने जीवन का साथी चुना है, प्रसन्नता को बढ़ाना जान पाएगा। विवाह प्रेम का अंतिम चरण नहीं, वरन प्रारंभ होगा।